जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी जय जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी
Yeah.
श्रोत्रशुद्ध His Divine Grace Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki
Jai
Anant Koti Vaishnavrinda ki
Jai
Namacharya Srila Haridas Thakur ki
Jai
Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinda ki
Jai
Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki
Jai
Vrindavan Dham ki Jai Mathrapuri Dham ki Jai Dwarkapuri Dham ki Jai Navdeep Mayapur Dham ki Jai Purushottam श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय गंगा माई यमुना माई की जय ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय रोहिणी मंदिर निर्माण योजना की जय हिताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ग्लोरीज टू गुरु गुरु ग्लोरीज टू श्री ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं गगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वासिन्धुभ्यैव च मां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे हरे कृष्ण तो पिछले हफ्ते तो हम लोग नहीं मिल पाए एकादशी भी थी और शायद गीता जयंती भी थी मोक्षदा एकादशी इसलिए सबका काम होता तो पिछले कुछ वर्ष समय से हम लोग कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि हम लोगों को मालूम पड़े कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है क्या क्या चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है और उसको हमने एक ऐसी प्रेजेंटेशन के द्वारा करा जिसमें कि हमारा भी इन्वॉल्वमेंट होता था और हम लोगों को भी सीखने को मिलता था। श्रीमद् भागवतम में जगह जगह पर हम लोगों को हमारी वास्तविक स्थिति के विषय में बताया गया। भगवद गीता में तो है ही है लेकिन श्रीमद् भागवतम में भी जो 18,000 श्लोक हैं शौनक आदि ऋषि सूद गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं और सूद गोस्वामी जिन्होंने की श्रीमद् भागवतम कथा सुनी है डायरेक्ट सुखदेव गोस्वामी जी के मुखारविंद से तो वो शौनक आदि ऋषि को भी सुनाते हैं और बताते हैं कि ये सब लोग एकत्रित हुए थे गंगा किनारे एकत्रित होने का कारण था कि इनको कलयुग के लक्षण देखने लगे थे। इन्हें ये दिखाई देने लगा था कि भगवान कृष्ण अब अपने धाम को जा चुके हैं और अब कलयुग के लक्षण प्रकट होने लगे हैं और क्योंकि ऐसे ऋषि फ्यूचर भी देख सकते थे भविष्य भी देख सकते थे तो देख पा रहे थे कि आने वाला समय कितना ख़राब होगा कितना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए भक्ति करना और इस हेतु सारे के सारे हजारों की संख्या में सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए और समाज की चिंता करने लगे कि क्या किया जाए क्या ऐसा यज्ञ किया जाए क्या ऐसी चीज़ की जाए जिससे कि आने वाली जनरेशन का फ़ायदा हो। तो ये भक्तों का स्वाभाविक जो है स्वरूप है कि दूसरों पे दया का हमेशा उनके अंदर भाव रहता है। वो बिल्कुल नहीं देख पाते कि कोई लोग इस संसार में दुखी घूमे, परेशान घूमे, तो जब वो देखते हैं कि इस प्रकार का आने वाला समय इतना दर्दनाक होगा लोगों के लिए, मंद सुमंद मतव मंद भाग्य उपाधता, तो इतनी बुरी स्थिति होगी, क्योंकि अभी वो खुद अच्छी स्थिति में है, क्योंकि ऋषिगण हैं, भजन इत्यादि में लगे रहते हैं, तो वो उस स्तर पर आध्यात्मिक चेतना का, आध्यात्मिक आनंद का लाभ उठा पा रहे हैं। लेकिन वो ये भी देख पा रहे हैं कि कलयुग एंटर कर गया है, 5000 साल पहले की बात करें, कलयुग के एंटर करने से उसके प्रभाव को भी देख पा रहे हैं। और इस प्रकार श्रीमद् भागवतम की सूद गोस्वामी से जो उन्होंने जिज्ञासाएं करी, फिर सूद गोस्वामी जी ने जो उनको सारा वर्णन किया उस कथा का, जो सुनी उन्होंने सुखदेव गोस्वामी महाराज से, तो उसमें जगह जगह इस प्रकार के प्रसंगों की जो है भरमार है श्रीमद् भागवतम में, जहां पर भगवान की भगवत्ता की इम्पोर्टेंस, भक्ति की, भक्ति योग की इम्पोर्टेंस, और जीवात्मा का इस संसार में स्ट्रगल अलग अलग प्रकार से कितने कितने एग्जाम्पल देकर समझाया गया। इसलिए जब बताया जाता है कि नित्यम भागवत सेवया, कि नित्य रूप से हमें भागवत का श्रवण करना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए, या फिर भागवत व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि एक है बुक भागवत, एक है लिविंग भागवत। जो हमारे सन्यासीगण हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो चलते फिरते भागवत कहलाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में गोविंद का विश्राम है, अपने हृदय में भगवान की इस वाणी को सदैव रखते हैं, उसका आचरण स्वयं रखते हैं, इसलिए वो चलते फिरते तीर्थ भी कहलाते हैं, चलते फिरते भागवत भी कहलाते हैं। और एक वो भागवतम ग्रंथ जो हमको प्राप्त हुआ है व्यासदेव जी के द्वारा, जिसमें कि हमारे लिए वो जीवन मूल्य लिखे गए हैं, जिसको कि हम पढ़कर समझकर, जैसे हम बच्चों को जब बात करते हैं, हम लोग देख पाते हैं कि अगर बच्चा ये काम करेगा तो इससे ये नुकसान होने वाला है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या कारण है कि कई बार बच्चे समझाने के बाद भी नहीं मानते और वो गलत काम कर बैठते हैं, और बाद में गलत होने के बाद उन्हें पता चलता है। उसी तरह हम भी कहीं ना कहीं बच्चे हैं, हमें भी बड़ी सारी चीजें समझाई जाती हैं, ये चीज आप ऐसे करेंगे तो इसका ये फायदा है, और ये चीज अगर इस तरह करेंगे तो इसका ये नुकसान है, लेकिन फिर भी कई चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसका प्रभाव हम पर नहीं, जिसका मतलब जो हमारे प्रभाव में नहीं होता। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में कई स्थानों पर इस सब चीजों के विषय में चर्चा हुई है, और श्रीमद् भागवतम का जो उद्देश्य है कि हम सब लोग बताते हैं नित्यम भागवत सेवा, अर्थात नित्य भागवत की सेवा करने से, श्रवण इत्यादि करने से, जो हमारे हृदय में अभद्र हैं वो समाप्त हो जाए। जब महाभारत के समय मार्कंडेय मुनि मिले युधिष्ठिर इत्यादि से, तो उनको सबसे बड़ा फायदा क्या था कि जंगल में आने के बाद भी साधुओं का संग मिल रहा था उनको, और युधिष्ठिर महाराज से कहते भी हैं कि भाई बड़ा फायदा हो गया हमें तो, है ना, क्योंकि कई बार राज्यों में जहां राज ऐश्वर्य है तो साधु संत वैसे ही नहीं घुसते। एक जगह नारद मुनि जी भी कहते हैं कि जो अमीर व्यक्ति होता है ना, साधु उसके घर जाने से कतराता है, क्योंकि बाहर लिखा होता है बीवेयर ऑफ डॉग्स, है ना, सेल्समैन साधु इत्यादि ना आए, और चौकीदार खड़ा रहेगा 50 पहले प्रश्न करेगा क्यों आयो, कहाँ से आयो, क्या मतलब है। तो साधु जन, वैष्णव जन, नारद मुनि जी कहते हैं इस प्रकार के धनी परिवारों में जाने से क्या करते हैं, कतराते हैं, जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि पहले ही ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल है, या कोई ना कोई ऑफेंडर खड़ा है उधर, तो उसको मालूम है कि अगर मैं यहां जाऊंगा तो वो ऑफेंसिव करेगा मेरे प्रति। साधु घर में इसलिए जाते हैं, लोगों के अपने चरणों को रखते हैं उनके घर में, कृष्ण कथा करते हैं, ताकि वो जो गृहस्थ है, वो जिस माया जाल में फंसा हुआ है, जिसके जीवन का लक्ष्य केवल आहार निद्रा भय और मैथुन है, जो इससे ज्यादा कुछ सोच नहीं सकता, जिसको केवल अपने बिजनेस का प्रॉफिट, अपने जिह्वा के स्वाद के लिए उसका उपभोग, अन्य इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य करना, तो इस प्रकार जो ग्रह मेदी हैं या जो गृहस्थी में इतने फंसे हुए हैं कि जिन्हें जीवन का लक्ष्य नहीं पता, तो इस प्रकार के संत लोग जब उनके घरों में जाते हैं या ऐसे लोगों को जब इन्वाइट किया जाता है तो बताते हैं कि इससे उनके परिवार पवित्र हो जाते हैं, उनका धन, उनकी वाइफ, उनके बच्चे जब वैष्णव की सेवा करते हैं तो उनका बहुत बड़ा पुण्य होता है। और पंचम स्कंद में या चतुर्थ स्कंद में तो बोला है कि जिन परिवारों में वैष्णव जन नहीं जाते, जिन घरों में वैष्णवों ने चरण नहीं रखे, उन घरों की तुलना की गई है जंगल के उन शुष्क वृक्षों से जिसमें अजगर और सांप रहते हैं। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने अपना 5 करोड़ 50 करोड़ रुपए लगा के जगह खरीदी, 10 करोड़ लगा के मकान बनाया और घर में सब कुछ बहुत आलीशान है, लेकिन ऐसे परिवारों में, ऐसे मकानों में अगर वैष्णवों के चरण नहीं डले, ऐसे परिवारों में वैष्णवों को स्थान नहीं दिया बैठने का, उनका आदर सत्कार नहीं किया, उनको प्रसन्न नहीं किया, तो वो परिवार क्या है, किसके समान है? उस शुष्क वृक्ष के समान जिसमें अजगर इत्यादि रहते, कोई फायदा नहीं, केवल ईंटों का। सुखदेव गोस्वामी जी भी बताते हैं कि वैष्णव जन स्वयं भी जब जाते थे किसी परिवार में तो कहते हैं गाय जब तक दो ही जाती है जितना समय लगता उतनी देर परिवार में रहते थे, ज्यादा समय रहते भी नहीं थे। कृष्ण कथा करेंगे, जीवन का लक्ष्य बताएंगे, निकल जाएंगे। तो जब युधिष्ठिर महाराज और सब अपने परिवार मतलब को त्याग करके जब इनको कारा वो दिया गया वनवास इत्यादि, तो सब जंगलों में थे। तो अच्छा, जो मैं बात बता रहा था कि ऐसे परिवारों में जाने से वैष्णव लोग हिचकते हैं, जाते ही नहीं, क्योंकि उनका आदर सत्कार भी नहीं होना, और कुछ व्यक्ति ने बोल दिया तो नुकसान किसका है? उन्हीं का नुकसान है। और दूसरी बात वही कहते हैं कि इसके तुलना में जो निर्धन व्यक्ति है, ऐसे परिवारों में वैष्णव जन बेहिचक चले जाते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा है, उन पर उनका विश्वास है, वो वैष्णव सेवा करना चाहते हैं, वो वैष्णव को देखकर प्रसन्न होते हैं, तो वो उनको आमंत्रित करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। इसमें किसका भला है? उस परिवार का भला है। तो ऊंचे महलों में तो हो सकता ना जाए, लेकिन खैर युधिष्ठिर महाराज का ऐसा स्वयं धर्म के रिप्रेजेंटेटिव थे तो उनके तो यहां देवता ऋषि इत्यादि आते थे, बट जब वो जंगलों में रहे तो उनको बहुत ज्यादा संघ प्राप्त हुआ, वो इतने सारे ब्राह्मणों को लेके भी साथ चल रहे थे अपने राज्य के, मालूम है, खाली 5-6 लोग नहीं थे, पूरे महाभारत में लेके हर जगह वो साथ ही चलते थे सारे वैष्णवों को, उनके खाने पीने की भी चिंता करते थे। और जब देखो कथा कहानी चल रही है, और इसके अलावा कई कई प्रकार के ऋषि मुनि इत्यादि कहीं ना कहीं से पहुंच जाते थे उनको संग देने के, और हर जगह कृष्ण कथा, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ सीख रहे हैं। तो मार्कंडेय मुनि जब पहुंचे तो उनके बारे में सुना था उन्होंने कि ये तो चिरंजीवी हैं, ये जीते रहते हैं हमेशा, और भगवान की कृपा से हमें पता चला कि मार्कंडेय मुनि ने तो प्रलय का सीन भी देखा हुआ है ना। कई बार लोग बोलते हैं ना किसने देखा, है ना, आजकल की पीढ़ी के लोग बोलते हैं किसने देखा, सच है भी कि नहीं। तो मार्कंडेय मुनि जी भी एक बार उन्होंने भी इच्छा जताई थी कि ये प्रलय वरलय होती क्या है, कैसी होती है, क्योंकि इतने उम्र तक तो कोई जीता ही नहीं है, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी। तो भगवान ने उनको दिखाया था, उनको सारे युग दिखाए बदलते हुए, किस प्रकार प्रलय होती है, किस प्रकार 100 वर्षों तक खूब वर्षा होती है, किस प्रकार 100 वर्षों तक खूब सूरज की रोशनी जो है पड़ती है उसको जला देती, सब कुछ बहुत बुरी हालत, लेकिन वो हमेशा जीते रहते थे, मतलब उन सबका प्रभाव उन पर पड़ता था लेकिन मृत्यु नहीं होती, तो सब देख पाते थे कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। प्रलय में जब प्रलय होती है तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ये सब पानी से भर जाते हैं, इतने 100 वर्षों तक वर्षा होती है, वर्षा ही वर्षा, और खूब भयंकर वर्षा। 4 तरह की प्रलय होती है वैसे तो श्रीमद् भागवत, हाँ, देवताओं के 100 वर्ष बताए, तो काफी, क्योंकि ब्रह्मा जी सुप्त अवस्था में है तो सब कुछ ढक दिया जाता है, सारी की सारी प्रलय से 100 वर्षों तक ढक जाता है सब कुछ, तो जितने भी जीव कीटाणु विटाणु हैं कितनी देर तैर लेंगे, 36,000 साल तक तो कोई नहीं तैर सकता ना बिना कुछ खाए पिए, तो मरना ही मरना है सबको, तो फिर मर जाते थे लोग। और फिर कुछ मान लो कि हम तो पानी के जीव हैं, तो ठीक है फिर 100 वर्षों तक
स्कॉर्चिंग सन, मतलब ऐसी हीट आती है सूरज की, इतनी खतरनाक गर्मी कि वो सारे पानी को भी सुखा देती है और सब कुछ सुखा देती है, तो उसमें कोई बचा तो उसमें मर जाते हैं। तो इस प्रकार प्रलय के द्वारा सब कुछ, ऊंचे एक दो प्लैनेट रह जाते हैं, बाकी सबको पानी से भर दिया जाता है, सब कुछ कर दिया जाता। तो इस प्रकार उन्होंने सब कुछ देखा और फिर उन्होंने युधिष्ठिर जी ने कहा कि आप बैठिए, कुछ हमें समझाइए, कुछ बताइए जो आपने देखा। याद से 5000 साल पहले की घटना बता रहे, तब टेलीविजन कैमरा नहीं था, रिकॉर्डर्स नहीं थे, डिक्टाफोन नहीं थे, है ना, HD कैमरा नहीं थे, है ना, आईफोन नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, ये तब की बात है। नहीं तो युधिष्ठिर महाराज भी मार्कंडेय मुनि के साथ ऐसे फोटो खिंचा के, सेल्फी खींच कर फेसबुक पे डाल सकते थे कि देखो मैं इनके साथ बैठा था, है कि नहीं, और उनकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर सकते थे। एक वीडियो, अर्जुन वीडियो भी बनाता, देखो मार्कंडेय मुनि हमारे यहाँ आए, इन्होंने चर्चा की है, इन्होंने देखा है, देखी कृष्ण को भी देखी, तब नहीं था ये सब चीज, है ना। तो लेकिन ये घटित हुई है चीजें, घटना तो घटित हुई है ना। तो जब उन्होंने चर्चा करी, जब उन्होंने समझाने का प्रयास किया, तो बताया कि किस प्रकार प्रलय आती है, फिर बताया कि किस प्रकार युग बदलते हैं और किस किस युग में कैसे कैसे भगवान अवतरित होते हैं ना, और फिर किस में क्या क्या लक्षण होते हैं। तो कलयुग के लक्षण बताने लगे, द्वापर युग में कौन से लक्षण बता रहे हैं, आने वाले युग के कलयुग के लक्षण बताने शुरू कर दिए मार्कंडेय कि क्या क्या होगा कलयुग। और ये सुनकर युधिष्ठिर जी के ना कहते सच में ऐसा होने वाला है क्योंकि द्वापर युग तक धर्म जो है बताते हैं 50% से 75% तक जा रहा था, लेकिन फिर भी धर्म था, माता पिता का सम्मान, सत्य, अब सत्य पे तो वो चल ही रहे थे ना, उनके भाई लोग उनके साथ गलत कर रहे हैं, बार बार मुकर रहे हैं, जुए में हरा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वो धर्म के साथ थे, सत्य बोलेंगे, सत्य करेंगे। तो ऐसा सत्यवादी व्यक्ति को तो डाइजेस्ट नहीं हो सकती थी ऐसी चीजें। तो जब उन्होंने लक्षण बताना शुरू करे कि कलयुग में लोग किस प्रकार अधिक खाने वाले, कम हाइट के, कम उम्र के, एजिटेटेड, है ना, और किस प्रकार भाई भाई के खून का प्यासा होगा, सब कुछ बताया, स्त्रियों के बारे में सब कुछ बताया, तो उन्होंने कहा भाई रहने बस इतने, ठीक है, बंद करा दिया, ये नहीं हो नहीं सकता, ज्यादा नहीं सुन सकता, कहते बस होने वाला है, मतलब अब होने वाला है, अभी युधिष्ठिर सब लोग हैं। तो कहने का क्या मतलब है, ऋषि मुनिगण का उद्देश्य होता था लोगों को सत्य से अवगत कराना, क्योंकि हम लोगों के साथ सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो ये, जब बोला जाता मंद सुमंद मतयो, कि ये जो बुद्धि है ये मंद होगी, मंद बुद्धि के होंगे, नहीं समझ आता, नहीं याद आता, हर समय नॉलेज में नहीं रह पाते। अगर हर व्यक्ति हर समय ज्ञान में है, हर समय ज्ञान का मतलब कि वो लिबरेटेड स्टेज में है, ज्ञान का मतलब कि मैं आत्मा, भगवान परमात्मा इस संसार क्यों बना है, हर व्यक्ति को तमोगुण रजोगुण सतोगुण की सारी बारीकियां मालूम है, कैसे काम करते हैं, मेरे साथ जो घटना घटित हो रही है, या क्रोध आ रहा है, या जो एजिटेटेड सिचुएशन बनी हुई है, वो सारी चीजों को बड़ा ध्यानपूर्वक समझ पाते हैं जो लोग ज्ञान में है। लेकिन बहुत लंबे समय तक हम ज्ञान में नहीं रह पाते। जैसे एक बार एग्जांपल दिया था ना ज्ञान का, कि एक बार एक व्यक्ति आता है किसी साधु से मिलने के लिए उनके घर पर, तो जब घर पर आता है तो घर पे नहीं होते, वो तो कहते हैं वो तो आज किसी की मृत्यु थी तो चले गए वहाँ पर शमशान तक, कहते बट मुझे मिलना उनसे बहुत ज़रूरी, कहते ठीक है आप चले जाओ शमशान घाट में मिल जाएंगे आपको, मिल लो जाके। तो उसने कहा मैं पहचानूंगा कैसे, मैंने तो आज तक देखा भी नहीं है उनको, कहते आप उनको हजारों में भी पहचान सकते हैं, वो इस प्रकार का उनका जो है दैदीप्यमान तेजस्वी उनका जो है मुखमंडल है। तो गए वो शमशान में चले गए मिलने के लिए, तो शमशान में देखते हैं कि वहां तो सबके तेजोमय मुखमंडल है, सब लोग चमक रहे हैं, सबके माथे से प्रकाश निकल रहा है ज्ञान का। तो अचंभित हुए, वो कहते अभी तो टाइम लगेगा यहाँ पर, अभी जलाना वलाना है, है ना। तो उन्होंने उनको फिर दोबारा बोला माता जी को कि मैं तो नहीं पहचान पाया, सारे ऐसे थे वहां, तो कहती है बाहर खड़े होके इंतजार करो, पता चल जाएगा। तो फिर बाहर खड़े हो गए, तो जब पूरा कार्यक्रम पूरा हुआ तो फिर जब लोग बाहर निकलने लगे तो देख रहे सब लोग ऐसे तेजोमय वैष्णव जो है आ रहे हैं, मतलब भक्त लोग आ रहे हैं, मतलब जो सामान्य जन है आ रहे हैं, लेकिन क्या देखते हैं, बाहर आते आते धीरे धीरे एक एक व्यक्ति का जो तेजपन था वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगा है और गेट पर आते आते खत्म होता जा रहा है। सब ढीले, सब अंधकार में होते जा रहे हैं। और फिर देखते हैं कि आखिरी में एक व्यक्ति ही ऐसा है जिसका आखिरी तक तेज था, वो उनके जाके चरणों में पड़ गए। कहते जी आप श्रीमान, ये कहते हाँ मैं ही हूँ। कहते जी मिलने आया था आपसे। कहते बात तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो मुझे ये समझाओ, आपकी वाइफ ने कहा था कि ऐसे ऐसे, तो मैं आया तो इधर सभी ऐसे थे, फिर दोबारा गया मैं कैसे पहचानूंगा, उन्होंने कहा बाहर खड़े होकर करना, तो बाहर आया तो सबका तो फीका पड़ गया, आपका ही तेजवान, ये क्या चक्कर है। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि जो ज्ञान है, जो भगवान की दिव्यता है, जो व्यक्ति साधना करता है और जो ज्ञान में रहता है, इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य नॉलेज के मध्य में जो उसको अप्लाई करता है, तो वो हमेशा तेजवान रहता है। कहते बट मैं ये नहीं समझा, इनका भी था और अब नहीं है। कहते एक्चुअली जब हम शमशान में आए तो शमशान में आने के बाद सबका वैराग्य जाग जाता है ना, क्या रखा है जीवन में, आखिर में तो यही होना है ना, क्या खाया, क्या कमाया, है ना। तो ये सब लोग ज्ञान में आ गए, सबकी जो है ज्ञान की सुफुर्ति हो गई सबको कि अल्टीमेटली क्या लेके जाना है यहाँ से संसार में, है ना, क्या दोस्त, क्या दुश्मन, क्या ये भोग, सब बेकार की चीज है। तो जब इनको मन में ऐसा चल रहा था तो उस समय ये सब ज्ञान में थे, जो ज्ञान में थे तो इनका माथा चमक रहा था। जैसे जैसे ये सब लोग शमशान से बाहर आने लगे तो इनके बल्ब फ्यूज होने लगे, इनको काम याद आने लगे, इनके फोन कॉल आने लगे, इनकी फैक्ट्री से माल की बात होने लगी। तो इनका जो है ये फिर देहात्म बुद्धि में आ गए। तो देहात्म बुद्धि में आते ही क्या हो गए, ये लोग फिर से अज्ञानता में आ गए और फिर से इनको अपने सारे वो काम, सारे धंधे, सारी सारी बातें, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध सब इनके ऊपर हावी हो गया। लेकिन जब तक अंदर थे तब तक ज्ञानवान थे। और कहते क्योंकि मैंने इस ज्ञान को स्थित कर रखा है अपने अंदर, मैं इस ज्ञान का पालन कर रहा हूं, मैं शरीर और आत्मा के भेद को जानता हूं, मैं हर समय ज्ञान में रहता हूं, तो इसलिए इसका ज्ञान, ये जो तेज में है, बना हुआ है। तो हमारी स्थिति में क्या है कि हमारा भी क्या होता है, कई बार ब्लिंक होता है बस, कई बार हमारी स्थिति अगर देखें, कई बार क्या बोले, किस तरह होता है, मतलब वैसे अंधकार में रहते हैं लेकिन कई बार ब्लिंक होता है, हल्की सी चिंगारी से निकलती है, जुगनू तो फिर भी बार बार चमकता है। तो हल्का सा ब्लिंक होता है कई बारी, जब यहां पर दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, या कई बार ग्रंथ पढ़ते हैं, या कोई सेवा करते हैं, या हरिनाम लेते हैं, तो पूरे दिन में कई बारी नाम अभास की स्थिति में आते हैं, या रियलाइजेशन करने का प्रयास करते हैं, या थोड़ा सा ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, या मटीरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटीरियल वर्ल्ड की टेंशन को ध्यान करते हैं, तो थोड़ा सा वैराग्य उत्पन्न होता है, हल्का सा होता है। तो उस समय हल्का सा क्या होता है, एक चिंगारी से निकलती है कि हाँ है तो बड़ा मुश्किल संसार में है, देखो दुख भी है, कष्ट भी है, समस्याएं भी हैं, क्या कर लिया हमने यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा वैराग्य आता है, अचानक फोन आता है, अचानक किसी ने काम बोल दिया, अचानक कुछ बोल दिया, फिर बंद करो उसको, फिर उधर चल जाता है। मतलब कहने का क्या मतलब है, हम तटस्था शक्ति हैं भगवान की, एक अंतरंगा शक्ति है, एक तटस्था शक्ति है, एक बहिरंगा शक्ति। हमारी स्थिति क्या है कि हम लोग बीच में, मध्य में खड़े हैं, जैसे समुद्र के कोने में खड़े हो जाए, तो प्रभाव जो है हमारे ऊपर दोनों का बराबर पड़ सकता है, या हमारी इच्छा है कि हम किधर जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर प्रभाव किसका ज्यादातर, भगवान की बहिरंगा शक्ति का, माया का। दूसरे स्कंद के, सॉरी पहले स्कंद के सातवें अध्याय के पांचवें श्लोक में सुद गोस्वामी जी कह रहे हैं, यया सम्मोहितो जीव आत्मनम त्रिगुणात्मकम परोपि मुनते अनर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। वो कह रहे हैं कि ड्यू टू दिस एक्सटर्नल एनर्जी, ये जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, ये जो जीवात्मा है, वास्तव में यद्यपि ये दिव्य है और मोर जो मटीरियल है, अच्छा तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से ये क्या है, ऊपर है भाई। बहिरंगा शक्ति की जब बात करते हैं तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण बोलते हैं, इसका प्रभाव होता है। लेकिन कह रहे हैं कि वास्तव में जो जीवात्मा है, जो महात्मा की बात करें, जीवात्मा है क्या? भगवान का दिव्य स्फुलिंग, तटस्थ शक्ति है, लेकिन भगवान की शक्ति है ये, जो कि बहिरंग शक्ति से ऊपर है, तटस्थ है लेकिन भगवान का अंश है। सत चित आनंद, वही तीन गुण हमारे अंदर जो भगवान के अंदर है। लेकिन कह रहे हैं इस मटीरियल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से क्या होता है, वैसे तो ये मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर से ऊपर है आत्मा, हमेशा तीनों गुणों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता क्योंकि ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। लेकिन फिर भी क्या होता है, क्या करता है, थिंग्स ऑफ हिमसेल्फ एज अ मटीरियल प्रोडक्ट एंड दस अंडरगोज द रिएक्शन ऑफ मटीरियल मिजरीज। ये क्या सोचने लगता है कि मैं क्या हूं, मैं भी इसी संसार में बना हूं, मैं भी इसी का बना हुआ हूं, इसी मटीरियल एनर्जी से बना हुआ हूं, और इसलिए यहां के रिएक्शन जो हैं क्योंकि अपने आप को मानता है क्या वो कि मैं यहीं का एक प्रोडक्ट हूं, अहम ममेति मन्यते, ये मैं हूं और जो जो मैंने इकट्ठा किया है वो सब किसका है, मेरा है। पहली तो अहंकार क्या कि ये शरीर मैं हूं, और दूसरा इस शरीर से जुड़ी चीजें सब मेरी हैं। इसकी वजह से इसको क्या करना पड़ता है, इसको बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत इन सारी प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। अब समस्या, इस संसार में हम समस्या का नाम देते हैं खाली उन चीजों को जो हमारे मन माफिक या शरीर के माफिक नहीं हो रही। समस्या, दुख या तकलीफ की परिभाषा क्या है हमारे हिसाब से? दुख का मतलब क्या है?
धन का नाश।
जो हमारे बॉडी के लिए,
हाँ, तो एक सेंटेंस में जो हमारे शरीर और हमारे मन के अनुकूल नहीं हो रहा, ये जिसकी वजह से हमारे को सुख प्राप्त नहीं हो रहा, यूं कह सकते हैं, ये हम उससे कंफर्टेबल नहीं है, चाहे वो शरीर में कोई डिजीज आए या कोई लॉस हो या फ्यूचर इनसिक्योरिटी हो, तो ये सारी चीजें हमें दुख कष्ट देती है कि नहीं? तो इसको हम दुख का नाम देते हैं, इसी को हम, और इनसे हम बचना चाहते हैं, हम हर परिस्थिति ऐसी बनाना चाहते हैं जहां पर हमें शारीरिक या मानसिक या फ्यूचर में आने वाले समय का दुख या कष्ट ना हो, हमारे सारे प्रयास इसीलिए होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बैठा भी है तो बैठने के स्थान को भी कंफर्टेबल चाहता है, बिल्कुल, आप बैठे हो कहीं पर और कुछ चुभ रहा हो, कैसा कुछ भी, तो आप एकदम ठीक करने की कोशिश करोगे, तो आप चाहते हैं शरीर भी बिल्कुल हमेशा हमारा क्या रहे, कंफर्टेबल जोन में रहे। कोई भी नहीं चाहता मुझे बीमारियां हो, इसलिए बीमारी ना हो इसलिए हम शरीर के लिए बड़ा कुछ करते हैं, भोजन करते हैं, प्राणायाम इत्यादि करते हैं, वॉक इत्यादि करते हैं, ठीक है, वस्त्र आभूषण सुंदर पहनते हैं, कारण कि हम ठीक दिखें और हम ठीक रहें। और वो सब चीजें जैसे जो धन से संबंधित है, जो भोगों से संबंधित है, जो फ्यूचर इनसिक्योरिटी, इन्हीं सब चीजों को जुटाने में मन, इंटेलिजेंस और इस शरीर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। तो हमारे हिसाब से दुख की जो परिभाषा है वो ये कि जो हमारे शरीर और मन के अनुकूल ना हो वो हमारे लिए दुख है कि नहीं? और इसी को हम दुख मानते हैं और इसी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और इसी के चलते हम मंदिरों में भी आते हैं। कुछ लोग तो माला भी इसीलिए शुरू करते हैं कि शायद इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना, सकाम भक्ति जिसे बोलते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है कि शारीरिक और मानसिक रूप से मैं क्या रहूं, संतुष्ट रहूं, सब ठीक रहे। तो हम लोगों के साथ समस्या ये है कि हम दुख को अर्थात उन परिस्थितियों को जो हमारे शरीर और मन के अनुकूल नहीं है उसको हम दुख मानते हैं, लेकिन जो सो कॉल्ड सुख है, सुख की क्या परिभाषा हुई फिर? जो हमारे मन और शरीर के अनुकूल हो रही है वो उल्टा ही हो गया ना। जो हम दुख हुआ वो है जो मन और शरीर के अलावा अलग हो रही है, और सुख वो है जो शरीर और मन के अनुकूल हो रही है। इन दोनों परिस्थितियों में वास्तव में जो दुख है और जो सुख है, हमारी मानसिक स्थिति क्या रहती है? हम लोग अपने आप को तैयार किस चीज के लिए कर रहे हैं, या हमारी मेंटल, हमारा मेंटल स्टेट क्या रहता है जब दुख आते हैं या सुख आते हैं? किस अवस्था में हम ज्यादा खुश फील करते हैं? सुख में ना,
दुख आते तो थोड़ा सोचते हैं नीचे जाए, और सुख आते इसमें स्टेबल
है। सभी का ये उत्तर रहता है जनरली कि हाँ दुख आए तो जल्दी से निकल जाए और सुख वाली परिस्थिति में हमेशा ठीक रहे, मेंटेन रहे, अच्छा ना। लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार, वैष्णवों के अनुसार, इस संसार की दोनों परिस्थितियां ही एक वैष्णव के लिए, एक भक्त के लिए बहुत घातक है। समझ पा रहे? क्योंकि सुख हमें किससे बांधेगा? सुख भी बांधने वाला है और दुख भी बांधने वाला है। दुख आ रहे हैं तो हमारे कर्मों का फल, जो पूर्व जन्म के कर्म किए हैं तो वो कट रहे हैं, और जो सुख आ रहा है वो भी हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो दोनों ही परिस्थितियां क्या हैं हमारे लिए? बंधन का कारण बनते हैं। जैसे जब नारद मुनि जी ने, बताते हैं, भगवान पर ध्यान लगाया, जब मेड सर्वेंट के बेटे थे वो, तो भगवान ने दर्शन भी दिया, अच्छी स्थिति में भी थे, भाव में भगवान का दर्शन किया उन्होंने, तो फिर भगवान ने उनको दर्शन देके फिर अपने आप को लुप्त कर लिया, फिर से गायब कर लिया, और फिर खाली आवाज आई जब उन्होंने और प्रयास किया देखने का। तो भगवान ने कहा कि अभी भी इस जन्म में अब तुम मुझे दोबारा नहीं देख सकते, मेरे पास नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इच्छाएं या कुछ ना कुछ मटेरियल टेंट्स या कहीं ना कहीं सुख से आप बंध गए, तो इस बैटरी प्रैक्टिस फॉर नेक्स्ट बर्थ, अभी तुम्हें उससे और खत्म करना पड़ेगा। तो कहीं पता नहीं कहां पढ़ा था मैंने, बट उसमें बताते हैं कि नारद मुनि जी जो हैं वो जब जंगल में गए, जब मेड सर्वेंट के बेटे थे तो जंगलों में गए तपस्या करने के लिए ना, तो वहां के सतोगुनी वातावरण से आज तक तो हो गए थे, एनवायरनमेंट को देख के बड़े खुश थे, बहुत अच्छी जगह है। तो सुख से बंधना भी क्या कारण बन रहा है हमारा? बंधन का, अर्थात वो भी हमारा एक अवरोध है भक्ति में। तो ये संसार जो है इस प्रकार से डिजाइंड है कि इस संसार में रहते हुए जीवात्मा, ये वो जीवात्मा है जो श्लोक में लिखा है कि वैसे तो तमोगुण रजोगुण सतोगुण तीनों से ऊपर है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो मानता है कि शरीर मैं हूं और जो मैंने इकट्ठा किया सब मेरा है, और इससे मुझे सुख मिलता है, इससे मुझे दुख मिलता है, और ऐसी परिस्थितियां ही मुझे रहनी चाहिए, मिलनी चाहिए जिसमें कि मैं सुखपूर्वक रहूं, तो इसके बंधन के कारण हमारा समय और बढ़ जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास धन धान्य है, कितने ऐसे लोग हैं जो सुंदरता है, सब कुछ है पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार, लेकिन अगर वो इन सब प्राप्त हुई चीजों का सही उपयोग नहीं करता और अहम ममेति में चक्कर में फंसा रहता है, तो ये उसके लिए बंधन का कारण बन गया, फिर और मुश्किल हो गई उसके लिए। तो इसलिए कहते हैं निर्बंध कृष्ण संबंध है युक्त वैराग्य उच्चते, अर्थात वैष्णवों को प्रयास करना चाहिए अपने हर सुख को या जो भी लाभ उसे प्राप्त हो रहा है वो सब कृष्ण से ही संबंधित देखना चाहिए, उसको जोड़ना चाहिए युक्त वैराग्य से, युक्त वैराग्य बनना पड़े। और विपरीत परिस्थितियों में जब दुख है, जब कष्ट है, जब समस्याएं हैं, ऐसी परिस्थितियों में भी ऐसी मानसिक दशा होनी चाहिए कि जिसकी वजह से वो पीड़ित ना महसूस करे, दुखी ना महसूस करे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति तिहाड़ जेल में है तो ये उसी की गलती है, क्योंकि उसने कुछ गलत किया इसलिए वो अंदर है। तो दोष भगवान का नहीं है, ये दोष किसी व्यक्ति का नहीं है जिसकी वजह से आप अंदर आए, दोष किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं है जिसकी वजह से पता चल गया, ये दोष उसका था, सजा आपको मिल गई। तो इस वजह से भी क्या आत्मग्लानी या नुकसान फील नहीं करना चाहिए, दोष तो उसका था, मुझे क्यों मिली सजा। इसके एकमात्र दोषी कौन है? हम ही है। कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आ रही है, हम दोष देते हैं दूसरों को, और इस प्रकार जब दोष देते हैं या कोई उस प्रभाव से निकलने के लिए या किसी को दोष देते हैं या कुछ कर्म होकर बैठते हैं, कुछ विशेष उद्योग करते हैं, तो हम लोग और कर्म जनरेट करते हैं, समझ रहे? और कर्म जनरेट हो रहे हैं, और हर कर्म का फल है, क्योंकि हर कर्म का फल है तो जितने फल हम जनरेट करेंगे तो पुनरपि जन्म है, फिर से जन्म है। तो जब जन्म द्वारा होगा तो उन फलों को फिर से भोगना पड़ेगा, वो अच्छे फल या बुरे फल, नित्य नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। कि एक वृक्ष है, उस वृक्ष में दो पक्षी हैं, एक पक्षी वृक्ष के खट्टे और मीठे फलों को खा रहा है, दूसरा पक्षी उस खाते हुए पक्षी को देख रहा है साक्षी रूप में, इसने ये मीठा खाया, इसने पूरा खा लिया, इसने ये कड़वा खाया, इसको छोड़ दिया, तो पूरे दिन वो ये देखता है उसको साक्षी के रूप में। तो वृक्ष जो है मनुष्य का देह है, और दो पक्षी में एक आत्मा अर्थात जीवात्मा जो हम है, और हमारे साथ रहने वाला पक्षी परमात्मा स्वरूप हमारे को देख रहा है। तो जीवात्मा इस शरीर के द्वारा अपने पूर्व जन्म के कर्मों को, के फलों को, चाहे वो मीठे हैं चाहे खट्टे हैं, ये जो और जनरेट कर रहा है उनका भोग कर रहा है। तो ये जीवात्मा जब पलटकर पीछे परमात्मा की ओर देखता है तब इसकी जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी शुरू होती है। लेकिन इतना आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सब व्यक्ति स्ट्रगल कर रहे हैं, और ज्ञान का प्रभाव खत्म होते ही हम फिर से धराशायी हो जाते हैं, फिर से भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आकर फिर से एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति की तरह हो जाते हैं। केवल कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं दिखता। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं, अरे तुम तो इतने समय से जा रहे हो मंदिर, आप अभी भी ऐसे हैं, आपने ये कर दिया, आप अभी भी ये खाते हैं, आपका प्रभाव नहीं पड़ता, समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जब ज्ञान लुप्त होता है तो अज्ञानता बढ़ जाती है ना। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो प्रकाश और अंधकार वास्तव में चीज तो एक ही एग्जिस्ट करती है, वो है प्रकाश। प्रकाश की एब्सेंस अंधकार कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि जब हम ज्ञान में रहते हैं तो ज्ञान का मतलब समझ पा रहे हैं? ज्ञान का मतलब कि हर जीवात्मा अपने वास्तविक स्थिति को हमेशा याद रखता है। जीव हेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। अब जब कृष्णेर नित्यदास की बात करते हैं तो नॉट ओनली फॉर कृष्णस दास ओनली, नहीं, कृष्ण हैं, षट गोस्वामी वृंद हैं, शिला प्रभुपाद हैं, गुरुजन हैं और वैष्णव जन हैं, सबके दास। और दासता का पोजीशन इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है, इतना आनंद पूर्वक है। जिस व्यक्ति को भगवान की सेवा करने का, भक्तों की सेवा करने का अगर किसी को टेस्ट मिल जाए, जो सेल्फलेस डिवोटी हैं, जो जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। अभी हमारे साथ क्या होता है कि हमें लगता है कि अगर मेरे पास ये चीज नहीं है तो उसका नुकसान है, या उसके पास ज्यादा है तो मेरा नुकसान है। नहीं, एक जीवात्मा के पास करने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे वातावरण में जहां पर कि आपको लगता है कि कोई कष्ट मिलने वाला है, कोई दुख मिलने वाला है, संबंध बिगड़ने वाले हैं, समझ रहे, तो ऐसे स्थान को छोड़ना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। सेवा जरूरी नहीं कि शरीर से ही करनी है, और अगर शरीर से ही करनी है लेकिन जहां पर आपको लगता है कोई दिक्कत हो सकती है तो उसको छोड़े, त्यागे, ऐसे स्थान पर आए जहां पर कि कोई और दूसरी सेवा कर सके, क्योंकि हम प्रसन्न कृष्ण को करना चाहते हैं, समझ रहे। और अगर सही चेतना में नहीं रहेंगे, सही प्रकार से सेवा नहीं करेंगे तो अपराध होंगे। वैष्णव तो फिर सारा ही है ना, जो जब कर आप सही हो चाहे आप गलत हो, आपने सही सिद्ध कर दिया अपने आप को चाहे गलत कर दिया, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होगी होगी। बहुत भयंकर है चलना वैष्णवों के बीच में, इसलिए इस प्रकार की सेवा करें, इस प्रकार की सेवाएं लें, या इस प्रकार के वातावरण में रहें, या ऐसे वैष्णवों के संग रहें जो अवॉइड करते हैं ऐसी चीजों, अवॉइड इन द सेंस कि उन परिस्थितियों को, क्योंकि हर व्यक्ति तो ट्रेंड नहीं है ना। अगर आज 10 लोग कोई बात समझ रहे हैं और वो ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं और 10 लोग नहीं समझ रहे, तो युद्ध तो हमेशा जारी रहेगा, कौरव पांडव तो बना ही रहेगा। नहीं समझे, एक जगह व्यक्ति त्याग सीख रहा है, एक जगह व्यक्ति समर्पण भाव सीख रहा है, एक व्यक्ति सेवा भाव सीख रहा है, एक व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, और एक व्यक्ति नहीं समझ रहा है ना। एक ही क्लासरूम है, कुछ लोग उसी क्लास से फर्स्ट भी आते हैं, कुछ लोग फेल भी होते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कैसे संग करना है, किसका संग करना है, कैसी सेवा लें, कैसे वातावरण में रहें। क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर किसी ने पूरा जगत प्राप्त कर लिया लेकिन अपनी आत्मा खो दी तो उसने सब कुछ खो दिया। उसी तरह हम लोगों ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, मान लीजिए बड़ी बड़ी सेवा प्राप्त कर ली, बड़ा बड़ा नाम प्राप्त कर लिया, 50,000, 2,000 सब लोग जानने लग गए हमें, लेकिन आपने वैष्णवों को साथ कैसे डील करना है, सीनियर्स के साथ कैसे डील करना है, गुरु की सेवा कैसे करनी है, वो भाव नहीं सीखा। तो सब कुछ प्राप्त कर कर भी वी आर द लूजर। इसलिए मैं तो कई बार, हम जब मीटिंग करते हैं या हम लोग मंदिर में होते हैं तो कई बार हम लोग देखते हैं भक्तों के अंदर बड़ा उत्साह है सेवा का, और अच्छा होना भी चाहिए, लेकिन कई बार अगर कोई सेवा ना भी मिले तो 64 माला की सेवा लेनी चाहिए। नहीं, कितना अच्छा हो जाएगा, समझ रहे, मतलब पूरा का पूरा अगर कोई ग्रुप इकट्ठे बैठे, चलो जी हमें आज इकट्ठे बैठेंगे और आज 6 घंटा रीडिंग करेंगे भागवतम, और फिर 2 घंटा डिस्कशन करेंगे। वो बात अलग है कि हमारा टेस्ट नहीं है, इसलिए बड़ा मुश्किल है डाइजेस्ट करना, ये भी आधा कर सकते हैं, समझ रहे। अगर होता क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति वैसे भागता जाए ना, वो पहाड़ गिर गया, पहाड़ गिर गया, सब भाग रहे, फिर सारे भाग रहे, पहाड़ गिर गया, कुछ गिरा कुछ नहीं, पत्ता गिरा था, कहते पहाड़ गया, आकाश गिर गया, एक कहानी थी जगह ना, ऐसे कोई खरगोश के ऊपर कुछ पत्ता गिर जाता ऊपर से, उसको लगता आसमान गिर गया, वो सबको बोलता, वो भागता, सारे भागने लगते, पूरा जंगल खाली हो जाता। तो कई बार लोगों को लगता है यार सब लोग इस चीज के पीछे भाग रहे हैं, दूसरा भी भाग रहा है, तीसरा भी भाग रहा है, सारे भाग रहे हैं, सबको लगता है यही इसके पीछे भागना ही शायद सक्सेस मानी जाती है ना। तो ऐसे उदाहरण पेश करना, हम गलतियां ना ढूंढे, हमने देखें कि वो हम कितना अच्छा पालन कर रहे हैं। वैष्णव सदाचार की किताब सबके पास है, कोर्सेज भी हुए, मैं उसमें से कितना पालन कर रहा हूं, मैं कितना अथॉरिटी को, गुरु को पालन कर रहा हूं, मैं कितना वैष्णव सदाचार का पालन करते हुए वैष्णव की सेवा कर रहा हूं। तो मैं करूंगा, मैं जितना जागरूक होऊंगा, जितना ज्ञान में रहूंगा, जितने सेवा भाव रहेगा, तो मैं दूसरों के लिए क्या बनूंगा, एक रोल मॉडल बनूंगा, उनको मैं उनको भी भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से निकलकर तटस्था शक्ति अर्थात तटस्थ जीव को भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति में प्रवेश करना, कृष्ण नाम जप, कृष्ण की सेवा, कृष्ण का गुणगान, कृष्ण के ग्रंथों का अध्ययन, वैष्णवों की सेवा, ये हमें, ये सारी सेवाएं वो हैं जो हमें अंतरंग शक्ति की ओर प्रवेश करती है। क्योंकि भगवद गीता में बोला है कि देवीम प्रकृति आश्रित, कि जो वैष्णव जन होते हैं वो देवी प्रकृति के आश्रित होते हैं, जो इस प्रकार श्रवण कीर्तन श्रवण इत्यादि करता है तो वो भगवान की दैवी प्रकृति अर्थात श्रीमती राधा रानी जो है ना, उनके आश्रित होकर सेवा करता है। और जब व्यक्ति अहम ममेति मन्यते अर्थात मैं और मेरा के हिसाब से करता है, तो वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत करता है। और अंतर क्या है कि बाहरी रूप से रख सकता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन हृदय में भक्ति का संचार या विकास नहीं होता, मन मुटाव हो जाता है, दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, ईर्ष्या बढ़ जाती है, अगर ठीक प्रकार से ना करें, हर समय मन में कुछ ना कुछ घूमता रहता है, कोई ना कोई पॉलिटिक्स चलते रहे, कुछ ना कुछ होता है। और वहीं अगर हम लोग अंतरंग शक्ति के अंदर अर्थात सिंपल सर्विसेज लेकर, सिंपल भक्तों के साथ बैठकर जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, चैंटिंग रीडिंग हेयरिंग को बढ़ाएं, तो इसका बहुत प्रभाव है। तो इस प्रकार हम लोग अपनी जो टेम्परेरी पोजीशन है मटेरियल वर्ल्ड में, जिसकी वजह से हम लोग हर समय अज्ञान में आकर फिर से भटक जाते हैं, उसको सदैव ज्ञान में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों चीजों को, चारों चीजों को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम हमेशा जागरूक कर सकते। हमें इस चीज की प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए कि आपने ये स्कंद पढ़ लिया, मैं इस स्कंद में हूं, आप ये पढ़ रहे हो, मैंने ये पढ़ लिया, इस तरह की डिस्कशन करनी चाहिए। मंदिर में क्या हुआ, उसने क्या बोला, अच्छा आजकल क्या चल रहा है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें ये नुकसान करती हैं भक्तों का। तो इस प्रकार अगर हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से भक्ति में आगे बढ़े, और जो ज्ञान में रहते हैं तो सदैव वो हमेशा बचे भी रहते हैं हर प्रभाव से, वो देख पाते हैं कि किस प्रकार हमारे ऊपर या दूसरे के ऊपर प्रकृति के तीन गुण काम कर रहे हैं। प्रकृति के जो तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, जब हमारे ऊपर कार्य करते हैं तो हमें इसका प्रभाव दिखना चाहिए। सतोगुण की क्या प्रवृत्ति है, भगवद गीता में लिखा है कैसा रहता है व्यक्ति, रजोगुण में क्या हादसे होते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे मन की स्थिति होती है, पता चलना चाहिए, और तमोगुण में कैसी स्थिति रहती है मालूम होना चाहिए। और जब हम कभी दूसरे से डील करें तो हम देख सकते हैं कि वही तीनों गुण दूसरे लोगों के ऊपर भी हावी होते हैं। तो जब रजोगुण में कोई बात की जाती है या प्रभाव दिखाया जाता है, उसमें ज्यादा द्वंद्व या ज्यादा समस्या बढ़ने का कारण रहते हैं। तो हर चीज को सतोगुण में डील करना, वैष्णव सदाचार के अंदर। तो इससे क्या होगा, ना तो कोई ऑफेंस होगा, ना कोई हम लोग रजोगुण के प्रभाव में भी नहीं आएंगे। और रजोगुण के प्रभाव में नहीं आ रहे तो इसका मतलब कम चांसेस हैं ऑफेंसेस के। और कई बार अगर रजोगुण दिखाना भी पड़ जाए, किसी को डांटना है, बच्चों को समझाना है, तो वो फिर कंट्रोल्ड वे में हो, उसका प्रभाव में मालूम हो, उसका उद्देश्य में मालूम, ठीक है ना। तो इस प्रकार भक्त को जो कि बता रहे हैं श्लोक में कि इनसे अलग है जीवात्मा इस भौतिक प्रकृति से, बट स्टिल काम कर रहा है उसके अंदर में, यहां समस्या हो रही है, तो इस प्रकृति से बाहर निकलना प्रकृति के प्रभाव से। तो ये लक्षण हमें ज्ञान में रखेंगे, ये लक्षण हमें भगवान के नजदीक ले जाएंगे, ठीक है ना। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या जिज्ञासा है?
जैसे कई बार हम फील करते हैं कि हमें कष्ट किसी के द्वारा दिया जा रहा है, तो उस केस में हम उनको सहन करें अपने कर्मों का फल समझ के, या उसको रिप्लाई करें?
रिप्लाई के भी तरीके होते हैं। प्रयास करें पहले बचने का। जैसे कोई बीमार है और वो बोले शायद मेरे कर्म का फल, और डॉक्टर के पास ही ना जाए तो और बीमारी बढ़ जाएगी। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कष्ट दे रहा है या कोई ऐसी परिस्थिति में है, तो सहन तो करना चाहिए, लेकिन उससे बाहर निकलने का भी प्रयास करते रहना चाहिए। और प्रयास सात्विक रूप से होना चाहिए, वैष्णव तरीके से होना चाहिए, उस तरह से प्रयास तो करने चाहिए। युक्त वैराग्य मतलब है कि जो कुछ भी हमारे पास है, ये पूरी की पूरी प्रकृति जो है, ये भगवान की सेवा के लिए है, भगवान के भोग के लिए है। भगवान कहते हैं मया अध्यक्षिणा प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में ही काम करती है, और ये मेरी इन्फीरियर एनर्जी है। तो बट डिवोटीज क्या करते हैं, जब वो संसार में आते हैं तो इस प्रकृति का कुछ ना कुछ प्रभाव या लाभ या पोजिशन उनके पास भी होता है। इस प्रकृति का, इसी प्रकृति से कार बनी है, इस प्रकृति से दूसरे शरीर बने हैं, इसी प्रकृति से धन बना है, इसी प्रकृति से खाने पीने की चीज़ें बनी हैं। तो डिवोटी क्या करता है, इन सारी चीज़ों को अपने एंजॉय के लिए भोग नहीं करता, वो इन सब चीज़ों को कृष्ण की सेवा में लगाकर उसको स्पिरिचुअलाइज करता है। उपयोगिता ही सिद्धांत जिसे बोलते हैं, कि भगवान की सेवा में लगा के उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करता है। कुछ भी हमारे पास है वो सब भगवान का दिया हुआ है और भगवान की प्रकृति है, तो उसको भगवान की सेवा में युक्त करते हुए इस्तेमाल करना। जब व्यक्ति भक्ति करते हुए, सोलह माला जप करते हुए, ग्रंथों का अध्ययन करता है, तो धीरे 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 उसको ये रियलाइजेशन होता है कि किस प्रकार कृष्ण ने अपना विस्तार कर रखा है इस सारे संसार में, कण कण में कैसे व्याप्त है, तो कैसे फिर वो इस प्रकृति को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। तो प्रभुपाद जी थे जैसे, हर चीज को लगा के वाजी कहते थे, भाई हमारे पास तो इतनी इतनी गाड़ियाँ, 17 गाड़ियाँ मंदिर में, 20 गाड़ियाँ, रिपोर्टर्स को बोलते है ना, कहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने पर्सनल कामों के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए। तो भक्त लोग तो जो सुबह शाम दोपहर माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, उनका तो सारा कुछ हो ही जाता है उस तरह। बट अल्टीमेटली कॉन्शियसनेसली प्रयास करना चाहिए, यस एवरीथिंग इज गिवन बाय कृष्णा, सो आई एम यूटिलाइजिंग देयर सेवा। शुरू में कई बारी भक्त लोग ठीक नहीं है, प्रचार के लिए किसी को आकर्षित करने के लिए बोल देते हैं, भाई तुम ये करोगे तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे क्या होता है, फिर वो छोड़ भी देगा जब नहीं होगा उसको, ठीक है। तो वास्तविकता से यह है कि हमें उसको बताना चाहिए कि संसार में दुखी दुख है, समस्याएं समस्याएं, और रुकने नहीं वाले। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कृष्ण भक्ति में आने से हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं, पाप समाप्त होने से उसके प्रारब्ध आगे नहीं आएंगे, पाप ही समाप्त हो गए तो, लेकिन जो प्रारब्ध बन चुके हैं वो तो आएंगे आएंगे, आगे ना आए और पाप हमसे और ना हो, तो उसको वृत्ति को खत्म करने के लिए हम हरि नाम लेते हैं। और कहते हैं कूट, बीज, अप्रारब्ध और प्रारब्ध चार स्थिति रहती है हमारी कर्मों की। जैसे एक बीज है, फिर एक पौधा बनता है ना, फिर एक वृक्ष बनता है, फिर फल लगता है। तो जो फल लग गए तो प्रारब्ध है, तो उस स्थिति में भगवान भी उस प्रारब्ध को डिवोटीज के अपने हिसाब से भेजते हैं कि मैं कौन सा भेजूं अच्छा करने के लिए इसको, और आगे करते खत्म नहीं करते उसको। प्रारब्ध अगर खत्म हो गए तो शरीर खत्म हो गया। ये शरीर मिला हुआ हमें क्योंकि प्रारब्ध है हमारा, कुछ ना कुछ कर्म ऐसे किए हैं चाहे अच्छे चाहे बुरे, जिसकी वजह से हमें शरीर मिला है। तो अगर प्रारब्ध खत्म हो गए तो शरीर एकदम खत्म हो जाए। तो इसलिए हमारे जो कर्म हैं, जो क्रियाएं हैं, वो कहीं ना कहीं इस रूप में पड़ी होती। लेकिन जब पूर्णतः समर्पण कर देते हैं कृष्ण को और फिर कृष्ण से संबंधित कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, सारी क्रियाओं को भगवान से जोड़ते हैं, तो सारे के सारे पाप या जो और कूट बीज में पड़े वो भी समाप्त हो जाते हैं। और जैसे भगवान कहते हैं कि सारे धर्मों का त्याग करो, मेरी शरण में आओ, तो मैं तुम्हारे सारे पाप से मुक्त कर दूं। तो उस स्थिति का मतलब है ये। नए कर्म जनरेट करने का मतलब है जैसे हम किसी के लाभ के लिए कुछ पैसे खिला दिए, कुछ दे दिया, जाओ तुम आज घूमो ऐश करो, है ना, और कुछ पुण्य कर दिया, है ना, किसी का भला कर दिया उस सेंस में। लेकिन हमें नहीं मालूम कि उसका क्या करेगा वो, उसने कुछ गलत कर दिया आगे, तो कर्म जनरेट हो रहे हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपने हृदय को इतना कठोर बना लें कि किसी की हेल्प भी ना करें। कई बार ऐसे भी होता है कि नहीं नहीं मैं तो फंस जाऊंगा इसलिए मैं कुछ नहीं करता। हर चीज़ को कृष्ण से जोड़ने का प्रयास कर, किसी की मदद भी करनी है तो उसको भगवान को भोग ला के प्रसाद खिला दो अगर कोई भूखा है तो, किसी को कुछ कपड़े देने तो भगवान के चरणों में लगा के ऑफर करके उसको को भैया हरी का नाम लो, कुछ माला करवा ली, वो कर लिया, मतलब उसको भगवान से जोड़ना। अगर किसी की शारीरिक मदद कर रहे हैं तो उसको उसके लिए आध्यात्मिक ही पूरा फूल देना। तो हमारे भक्त लोग तो खाना पीना रहना सोना सब भगवान के, सोने से पहले भगवान का नाम, उठते ही भगवान का नाम, घर में सबको प्रचार करते हैं, है ना, मंदिर आना, जो कमाई आती है उसमें से कुछ अंश भगवान को देना, और बाकी जो भी चीज़ें खुद करते हैं, कुछ भी भोग बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। तो इस प्रकार वो पूरी तरह से अपनी हर एक्टिविटी को कृष्ण से जोड़ देते हैं, उससे फिर प्राप्त मतलब हमारे खत्म हो जाते हैं, फल खत्म हो जाते हैं। देखिए क्या होता है, आपके विचार से काम नहीं चलेगा। सामने वाले व्यक्ति ने उसका धन का क्या उपयोग किया, उस धन से उसने कुछ गलत काम कर दिया, कुछ और कर दिया, तो उसको तो सहयोग मिल गया ना आपके धन का मिसयूज करने का, तो उसमें कारण आप भी बने। हाँ तो उसकी जरूरत को मैंने बताया ना, इस ढंग से पूरा करें। अगर ऐसी परिस्थिति आ गई है, कोई ऐसा व्यक्ति सच में आ गया जो बहुत नीडी है, तो उसकी मदद करो। किस तरह से, पहले तो ये देखो कि मैंने बताया शरीर की साथ साथ उसकी आत्मा का भी ख्याल रखना है ना। शरीर का ख्याल रखोगे तो कल को फिर शरीर की जरूरत पड़ेगी, कब तक करोगे, वो तो अपने कर्मों का भोग रहा है। लेकिन अगर आप उसकी मदद करना भी चाहते हैं, मान लो कोई वैष्णव है उसकी करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वैष्णव नहीं है तो उसको वैष्णव बनाओ, फिर उसको कहो भैया ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, पहले चार माला कर, है ना, और थोड़ा ये गीता का चैप्टर पढ़, ठीक है, तो ये लो 200 रुपये, है ना, ऐसा कर सकते वही तो है। तो इसलिए इस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए कि जोड़ लें। तो मुझे याद है एक बार एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, उनको उठा के ले गया हॉस्पिटल में, मैं उसके साथ भी गया, घर वाले भी आए उसके, फिर मैंने प्रयास किया उसको हरिनाम देने का, बोलने का भी, थोड़ा माला कराइएगा, कुछ कराइएगा, क्योंकि प्राणों की रक्षा भी तो हो गई, लेकिन साथ में मैं अपना काम कराया, थोड़ा सा हरिनाम दिलवा के कुछ भी कराया, और साथ साथ तो रह नहीं सकता था मैं कभी, कि पेरेंट्स भी आके बैठे भी आ गए उसके, प्रयास कर सकते हैं, उनका नंबर ले लिया, उनको भक्ति मांगा, क्योंकि किसी की मदद करो तो वो इंडेटेड फील करता है, वो आपकी बात सुनेगा सुनेगा कि आपने मेरे गलत समय पे मेरी मदद की थी, आप जो बोल रहे हो मैं वैसा कर रहा हूँ, तो ऐसा होता है। पढ़ाओ उनको, लेकिन उनको स्पिरिचुअली भी जुड़ने का बोलो, जब आप उनके लिए मदद कर रहे हो तो वो अभी आपके लिए कुछ करेंगे ना, आप उनको बोलो कि आपको मैं मदद कर रही हूँ तो आप भी मेरा कुछ सहयोग करिए, क्या कर सकते हैं, मदद उनको डिवोशनल सर्विस दे दो, अच्छा ये चार्ट बना, ये पेपर बना, ये एंट्री कर दे ना, थोड़ा स्पिरिचुअल काम दे दो उनको, कहना अच्छा ठीक है एक काम कर, मेरी कुछ माला लेगी तू कर दे मतलब ऐसे नहीं बोलना नहीं तो इसको लगेगा आप तो करते नहीं मुझसे करा रहे, उसके ये बोलना बेटा तू दो माला कर दे है ना, टाइम दे नहीं दे, करे गीता का एक चैप्टर पढ़ ले, थोड़ा थोड़ा पढ़वाओ उसको, कहने का मतलब कि जिसके आप मदद कर रहे हो उसके अगर पैसे बच रहे हैं वो करेगा नहीं आपके लिए, क्यों नहीं करेगा, क्या जब हम पढ़ा कर कर सकते हैं सब कुछ, हाँ चार घंटे एक्स्ट्रा और काम कर रहे
हैं अपने प्रसन्नता के लिए, काम किया अपने सुख के लिए, तो उसको हम किस प्रकार समझे कि हमें,
जो लोग चार नियमों का पालन कर रहे हैं, सोलह माला का जप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, भागवत सब कुछ कर रहे हैं, डिवोशन सर्विसेज में भी लगे हुए हैं, तो फिर उनका ना धीरे धीरे सारा काम स्पिरिचुअलाइज होने लगता है, वो उस काम को करते हुए भी कृष्ण का स्मरण करते हैं, हरि नाम लेते रहते हैं, जुबान पे चलता रहता है, और अगर कुछ ऐसा करता भी है, कुछ फल मिलता भी है, तो वो भगवान की सेवा में तो लगाता है, घर में भी आकर वो कुछ गलत थोड़ी काम करेगा, घर में भी अगर मकान भी बना रहा तो उसमें कृष्ण का विग्रह रखेगा, कुछ भी करेगा, जो भी इस्तेमाल करेगा उसका, तो धन से जो भी करेगा सब स्पिरिचुअली करेगा, ये तो बाहर के लोगों के लिए है, उसको सोचना पड़ेगा, डिवोटीज जो इनिशिएटेड होता है सब कुछ भगवान के लिए करते जा रहे हैं। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा राधिकरण जी की, कृष्ण बलराम की, बताए गौर के मन। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग एक भक्त के कहने पर हम मायापुर जाना चाह रहे थे ना, याद आपको बताया था तो हुआ क्या था कि कोई व्यक्ति था जो इस तरह का कार्य करता था, उसने कुछ भक्तों को या कुछ लोगों को कुछ टिकट्स कराकर तो दी थी,